हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास विषय विज्ञान के चैप्टर 9, जिसका शीर्षक है बल और गति, के चौथे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने पहले सेशन, दूसरे सेशन और तीसरे सेशन में इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिया है, जो है अदिश एवं सदिश राशियां, गति, दूरी तथा विस्थापन, चाल, वेग, चाल एवं वेग में अंतर, एक समान गति, असमान गति तथा त्वरण, गति का ग्राफीय निरूपण, बल, न्यूटन की गति के नियम। इस सेशन में हम न्यूटन की गति के प्रथम नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, संवेग संरक्षण, घर्षण, प्रणोद एवं दाब और अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। मुझे आशा है कि जो टॉपिक्स हमने पहले पढ़े हैं उन सबको आपने रिवाइज किया होगा और उनके कॉन्सेप्ट्स आपको जरूर याद होंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। सर आइजैक न्यूटन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। उन्हीं ने तीन नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप अपने किताब के पेज नंबर 110 में देखिए, जहां हम न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही बनी रहती है, या कोई वस्तु किसी निश्चित वेग से एक दिशा में गति कर रही है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गति करती ही रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। किसी भी वस्तु के विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन का वस्तु द्वारा विरोध किया जाता है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। वस्तु गति की जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। अतएव वस्तु की स्थिर अवस्था को परिवर्तित करनी हो या गतिमान वस्तु की गति की दिशा बदलनी हो, दोनों ही परिस्थितियों में बल लगाना पड़ता है। इसी कारण न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के इस नियम को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला स्थिर अवस्था के जड़त्व का नियम और दूसरा गति अवस्था के जड़त्व का नियम। अब मैं इसके बारे में बताता हूं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही बनी रहती है, या कोई वस्तु किसी निश्चित वेग से एक दिशा में गति कर रही है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गति करती ही रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, मैंने ऐसा पहले भी बताया है, जो विरामावस्था में है आपके रेस्पेक्ट में, तो वो वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे, या यूनिवर्स में कोई वस्तु एक वेग से एक दिशा में अगर मूव कर रही है तो उस वस्तु का वेग और दिशा वही तब तक बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करता हो। यह कहता है न्यूटन की गति का पहला नियम। इसे दो भागों में बांटा गया है, पहला स्थिर अवस्था के जड़त्व का नियम और दूसरा गति अवस्था के जड़त्व का नियम। पहले हम स्थिर अवस्था के जड़त्व के नियम को पढ़ेंगे और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। हमारे जीवन में स्थिर अवस्था के जड़त्व का नियम का क्या क्या उदाहरण है, क्या हमारे आसपास यह मौजूद है, क्या हम खुद से भी स्थिर अवस्था के जड़त्व के नियम को महसूस कर सकते हैं, या प्रतिदिन हम करते हैं, सिर्फ देखने का नजरिया है, हमारे साथ यह सब कुछ होता है, अब हम उसे पहचानने की कोशिश करेंगे। इसी को तो विज्ञान कहते हैं, घटनाएं तो पहले से होती हैं, हमें अब पहचानना है। चलिए शुरू करते हैं स्थिर अवस्था के जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। स्थिर अवस्था के जड़त्व के नियमों के उदाहरण, इस नियम के अनेक उदाहरण हमें दैनिक जीवन में मिलते हैं, उनमें कुछ का वर्णन हम यहाँ करेंगे। जड़त्व के इस उदाहरण के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे। स्थिर अवस्था के जड़त्व का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह अपनी स्थिर अवस्था बनाए रखती है तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अब दो गतिविधियां जो आप स्वयं करके देखें अपने घर में, इसके लिए मैं गतिविधि को पढ़ता हूं और अगर आप चाहें तो मेरे साथ यह गतिविधि घर पे कर भी सकते हैं। आपको चाहिए कांच का एक खाली ग्लास, एक मोटा सा गत्ता या कार्टून का टुकड़ा और एक सिक्का, 5 या 10 रुपए का सिक्का। मैं गतिविधि को पढ़ता हूं। गतिविधि 9.1। कांच का एक खाली गिलास लीजिए, उसके खुले मुंह पर एक मोटा चिकना गत्ते का टुकड़ा रखकर उस पर एक 5 रुपए का सिक्का रखिए। अब चित्र 9.10 के अनुसार कार्ड को अपनी अंगुलियों से तेजी से धक्का दीजिए। आप देखेंगे कि गत्ता तो आगे खिसक जाता है किंतु सिक्का गिलास में गिर जाता है। सिक्का गत्ते के साथ ही क्यों नहीं चला जाता? इसलिए कि सिक्के का जड़त्व उसे विराम अवस्था में ही रखता है, जबकि गत्ता उस पर झटके से लगाए गए बल के कारण गति में आ जाता है। इस क्रिया को करना बहुत ही आसान है, आप अपने घर में जरूर कीजिए। एक खाली गिलास पर एक गत्ते का टुकड़ा रख के उसके ऊपर सिक्का रखना है और गत्ते के टुकड़े को बहुत जोर से धक्का देना है। फिर क्या होगा आप जानते हैं, गत्ता का टुकड़ा आगे निकल जाएगा और सिक्का ग्लास में गिर जाएगा। होना क्या चाहिए था, जो हमें लगता है कि गत्ते के ऊपर रखा हुआ सिक्का गत्ते के साथ ही आगे की ओर बढ़ जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। दरअसल जो सिक्का है वो जड़त्व का नियम या स्थिर अवस्था के जड़त्व के नियम को फॉलो करता है और वो अपनी अवस्था बनाए रखता है। कौन सी अवस्था? विरामावस्था। मतलब वो जहां रहता है वहीं विराम की अवस्था में बना रहना चाहता है और इसी वजह से गत्ते के हटते ही वो सीधे ग्लास में आकर गिर जाता है। तो यह तो था पहला गतिविधि। अब दूसरा गतिविधि, गतिविधि 9.1 के लिए आप अपने किताब में चित्र 9.10 को जरूर देखें। अब दूसरी गतिविधि, गतिविधि 9.2, एक ही प्रकार के कुछ सिक्कों जैसे 1 रुपए के सिक्कों को एक के ऊपर एक रखकर 8-10 सिक्कों की एक ढेरी बनाइए। एक अन्य सिक्के को अपनी उंगलियों से तीव्रता से झटका देकर ढेरी के सबसे नीचे वाले सिक्के पर टकराइए। जब सिक्का ढेरी से बाहर निकलता है तो सिक्कों की ढेरी से केवल नीचे वाला सिक्का ही बाहर निकलता है। जब कोई अन्य सिक्का उस पर तीव्रता से टकराता है और शेष ढेरी उसी प्रकार बनी रहती है, क्योंकि शेष सिक्कों का जड़त्व उन्हें गति में जाने से रोकता है। इसके लिए आप अपने किताब के 9.11 चित्र को देखिए। यह भी बहुत आसान है। एक स्मूथ सरफेस पर 8-10 सिक्के रख लीजिए जो एक ही साइज के हों और फिर किसी दूसरे सिक्के से सबसे नीचे वाले सिक्के को धक्का दीजिए। आप क्या देखेंगे, सबसे नीचे वाला सिक्का निकल गया और बाकी सारे सिक्के ज्यों के त्यों ही वहीं रह गए। ऐसा क्यों हुआ? बचे हुए सिक्के विराम अवस्था के जड़त्व के नियम को फॉलो करते हैं और इस वजह से वो अपनी जगह पर बने रहते हैं, जबकि नीचे वाला सिक्का किसी सिक्के से टकराने की वजह से वहां से दूर चला जाता है। इस तरह का प्रयोग आप कैरम बोर्ड खेलते हुए भी अवश्य करते होंगे या जरूर देखा होगा आपने। अब आगे पढ़ते हैं, आप अपने किताब के पेज नंबर 111 को देखिए। दैनिक जीवन में जड़त्व पर आधारित कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं। स्थिर कार या बस को अचानक तेज चला देने पर उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर धक्का अनुभव होने का कारण यात्री का स्थिर जड़त्व होता है। यह आपने जरूर महसूस किया होगा ट्रेन के खुलते समय, या फिर जब कभी आप बस में सफर कर रहे होंगे उस समय। इस प्रकार के अनुभव होना मामूली सी बात है, परंतु क्यों होता है अब हमें यह जानना है। जब भी कहीं कोई बस रुकी हुई होती है, आप उसमें बैठे होते हैं और अचानक बहुत तेजी से बस चलनी शुरू हो जाए, या फिर जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं
और हमारे देश में जो मेट्रो है उन सबका स्पीड अचानक ही बहुत तेज हो जाता है,
तो इन दोनों केसेस में आप पीछे की ओर धक्का महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप स्थिर अवस्था में रहते हैं और आपका बॉडी स्थिर अवस्था के जड़त्व के नियम को फॉलो करता है। अब दूसरा उदाहरण, कंबल या गर्द लगे दरियों को लटकाकर जब डंडे से प्रहार किया जाता है तो धूल के कण पृथक हो जाने का भी यही कारण है। क्या आपने कभी देखा है कि कंबल जब थोड़े से गंदे हो जाते हैं तो उन्हें लटकाकर डंडे से पीटा जाता है? ऐसा क्यों? क्या कंबल ने कोई बदमाशी की है? बिल्कुल नहीं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कंबल को साफ करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। उस पर पड़े हुए धूल के कण को हम स्थिर अवस्था के जड़त्व के नियम को पालन करने की वजह से निकाल सकते हैं। जो कण है वो कंबल पर चिपके हुए होते हैं। जब हम डंडे से कंबल पर मारते हैं तो कण अपने स्थिर अवस्था में बने रहने की कोशिश करते हैं और कंबल हमारे फोर्स की वजह से, डंडे की फोर्स की वजह से पीछे की ओर चला जाता है और कण वहीं पर हवा में रह जाता है। इस तरह कंबल से कण को अलग किया जाता है। तीसरा उदाहरण है, घोड़े पर सवार बैठा है तथा घोड़ा अचानक दौड़ना आरंभ कर दे तो प्रायः सवार पीछे की ओर गिर पड़ता है। इसका कारण भी स्थिर अवस्था का जड़त्व ही है। और चौथा उदाहरण है, फल लगे पेड़ की डाल को जब हिलाते हैं तो उससे फल गिरने का भी कारण स्थिर अवस्था का जड़त्व ही है। यह सब उदाहरण आपको जरूर समझ में आए होंगे। इस तरह के और भी उदाहरण, स्थिर अवस्था के जड़त्व के उदाहरण जो आपके आसपास मौजूद हों, उनकी एक सूची बनाइए और उस पर अपने दोस्तों और अपने शिक्षक से विचार विमर्श और चर्चा कीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे गति अवस्था के जड़त्व का नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ इनर्सिया ऑफ मोशन कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह समान वेग से सीधी रेखा में गति करती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। गति की अवस्था के जड़त्व का नियम यह कहता है कि अगर कोई वस्तु मोशन में हो, वेग में हो और सीधे रास्ते पर एक ही दिशा में वेग में हो, तो उसका दिशा और उसका वेग तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। ध्यान रखना है, दो चीज नहीं बदलेंगी, क्या? एक वेग और दूसरा दिशा। अब गति अवस्था के जड़त्व के उदाहरण को देखते हैं। पहला, लंबी कूद देखने का आपको अवसर मिला होगा। लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ आता है। कूदते समय जड़त्व के कारण उसके शरीर की सामने वाली गति बनी रहती है, अतः वह अधिक दूरी तक कूदने में सफल होता है। क्या आपने कभी लंबे कूद को देखा है? वहां पर गति अवस्था के जड़त्व का नियम पालन होता है। जो धावक होता है, जो खिलाड़ी होता है, वह लंबी दूरी तक जाने के लिए गति अवस्था के जड़त्व का नियम का उपयोग करता है। वह अपनी बॉडी को सबसे पहले तेजी से दौड़ाता है और फिर उछल जाता है। उसका बॉडी मोशन में रहना चाहता है तो वह और दूरी तक आगे बढ़ जाता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो अधिक दूरी तक कूदने में सफल हो। अब दूसरा उदाहरण, तेज रफ्तार से चलती हुई बस को ब्रेक लगाकर एकाएक रुका जाता है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण गति अवस्था का जड़त्व है। जब बस गतिशील थी तब यात्री का पूरा शरीर बस के वेग से गतिमान था। ब्रेक लगाने पर यात्री के शरीर का निचला भाग जो बस के संपर्क में था बस के साथ स्थिर हो जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जो गतिशील अवस्था में था वह गतिशील अवस्था में बना रहता है। अतः ब्रेक लगाने पर बस में बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। वायुयान एवं वाहनों में जहां वेग में एकाएक परिवर्तन होने की संभावना होती है यात्री सीट बेल्ट लगाते हैं। इस उदाहरण को भी समझना आसान है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में इस प्रकार के अनुभव हमें होते हैं। जब कभी भी कोई ट्रेन में हम बैठे हों या बस में बैठे हों तो जब वेग अचानक कम हो या ब्रेक लगाई जाए तब हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर मोशन में रहता है, गति अवस्था में रहता है और वह चाहता है कि हम गति अवस्था में ही बने रहें। लेकिन जो बस है वह तो ब्रेक लगाता है, इस वजह से हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है। इस प्रकार के अनुभव हवाई जहाज में और अन्य वाहनों में भी हो सकते हैं। किसी वाहन के मुड़ने पर भी गति अवस्था के जड़त्व के नियम का उदाहरण हम देख सकते हैं। जब कोई वाहन में आप बैठे हो और वाहन अचानक मुड़े तो आप भी थोड़े से घूम जाते हैं या टेढ़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेग तो हो सकता है कि सेम हो परंतु दिशा में परिवर्तन होने की वजह से आपका बॉडी दिशा परिवर्तन नहीं करना चाहता है। गाड़ी में दिशा परिवर्तन है और आपका बॉडी वही दिशा बनाए रखना चाहता है, तो इस वजह से आप झुक जाते हैं या टेढ़े हो जाते हैं। अब अगला उदाहरण, जब कोई व्यक्ति चलती हुई गाड़ी बस या रेलगाड़ी से कूदता है तब मुंह के बल आगे की ओर गिर जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति गाड़ी में था तब उसका पूरा शरीर भी गाड़ी के वेग से गतिमान था। जब वह कूदता है तब उसके पांव जमीन को स्पर्श करते ही स्थिर हो जाते हैं, पर ऊपर का शरीर गाड़ी के वेग से गतिमान रहता है, फलस्वरूप व्यक्ति मुंह के बल आगे की ओर गिर जाता है। इसलिए चलती गाड़ी से कूदते समय उसकी गति की दिशा में कुछ दूरी तक साथ साथ दौड़ना चाहिए, जिससे उसका सारा शरीर गाड़ी की दिशा में कुछ देर तक गतिमान बना रहे। तत्पश्चात थोड़ी देर में वह अपने आप को संतुलित करके सुगमता से रुक जाता है। उचित यही है कि गाड़ी के रुकने पर ही उतरे। क्या आपने कभी देखा है कि कोई चाय वाला, अक्सर वो ऐसा करते हैं कि ट्रेन के खुलने पर ही उतरते हैं और उतरते समय जब ट्रेन चल पड़ती है तो वो भी कुछ दूर तक चलते रहते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति चलती ट्रेन से कूद गया तो वह किस प्रकार से गिरता है? हालांकि कभी भी किसी चलती हुई वाहन से नहीं उतरना चाहिए, यह खतरनाक है। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो वह मुंह के बल गिर जाता है, मतलब उसका चेहरा जमीन से टकराएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही व्यक्ति उतरता है तो उसका पैर जमीन के संपर्क में आने से स्थिर हो जाता है, लेकिन उसका ऊपरी शरीर वाहन की वजह से गति में ही रहना चाहता है और गति बनाए रखने के कारण वह गिर जाता है। तो इस तरह के अनेक उदाहरण आपके आसपास मौजूद हो सकते हैं, उन्हें जरूर देखें। अब आगे पढ़ते हैं, किताब में देखिए। जड़त्व तथा द्रव्यमान। सभी वस्तुओं का जड़त्व बराबर नहीं होता है। हमारा अनुभव है कि लोहे व रबड़ की समान त्रिज्या अर्थात समान आकार की गेंदों पर बल लगाकर जब उन्हें फेंकते हैं तो लोहे की गेंद के स्थान पर रबड़ की गेंद को फेंकना अधिक आसान होता है। इसी प्रकार पुस्तकों से भरे बैग की अपेक्षा खाली बैग को उठाना आसान होता है। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का समान रूप से प्रतिरोध नहीं करती हैं। वस्तुओं की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना अधिक उसका जड़त्व भी होगा। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में बदलाव का प्रतिरोध करता है। क्या आपने कभी सोचा कि यह प्रतिरोध सभी वस्तुओं का बराबर होगा या अलग अलग होगा? यह प्रतिरोध किस पर निर्भर होता है? क्या एक बस और एक ट्रेन दोनों समान रूप से प्रतिरोध करेंगे या दोनों में प्रतिरोध करने की क्षमता अलग अलग होगी? बिल्कुल अलग अलग होगी, और यह डिपेंड करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा, और इस वजह से उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा। किसी ट्रेन को उसके वेग से स्थिर अवस्था में लाने के लिए हमें ज्यादा बल लगाना होगा किसी बस की तुलना में। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। अब आगे पढ़ते हैं। आप अपने किताब के पेज नंबर 112 को देखिए। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जिसे इंग्लिश में न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। यहां पर हम सबसे पहले मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब संवेग। समान वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद को क्षेत्र रक्षक आसानी से पकड़ लेता है। वहीं गेंद से बहुत कम द्रव्यमान की गोली जब बंदूक से दागी जाती है तो किसी व्यक्ति द्वारा गोली को रोके जाने का प्रयास उसके लिए घातक हो जाता है। अतः वस्तु के द्रव्यमान व उसके वेग के गुणनफल से प्राप्त राशि की विशेष सार्थकता है। न्यूटन ने अपने द्वितीय नियम के कथन से संवेग की धारणा को प्रस्तुत किया। गति करती हुई किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। यदि किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान को m तथा वेग को वेक्टर v से व्यक्त करें तो वस्तु का संवेग वेक्टर p इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर v होगा। केवल परिमाण लेने पर p इज इक्वल टू m v। संवेग भी सदिश राशि है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। किसी गतिशील वस्तु के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिसमें बल लगाया जाता है। माना कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु का वेग वेक्टर u है। वस्तु पर वेग की दिशा में वेक्टर f बल लगाने से t समय पश्चात वेग वेक्टर u से परिवर्तित होकर वेक्टर v हो जाता है। तब प्रारंभिक वेग वेक्टर p1 इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर u। यह है समीकरण 9.9। t समय पश्चात संवेग वेक्टर p2 बराबर m इंटू वेक्टर v। यह है समीकरण 9.10। समय t में संवेग परिवर्तन डेल्टा वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर p2 माइनस वेक्टर p1 इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर v माइनस वेक्टर u। अतः संवेग में परिवर्तन की दर बराबर m इंटू वेक्टर v माइनस वेक्टर u बाई t। न्यूटन के दूसरे नियम से फोर्स वेक्टर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m इंटू वेक्टर v माइनस वेक्टर u बाई t, या वेक्टर f इक्वल टू k इंटू m वेक्टर v माइनस वेक्टर u बाई t। यहाँ k नियतांक है। यहाँ वेक्टर v माइनस वेक्टर u बाई t वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को बताता है, या वस्तु में उत्पन्न त्वरण a है। अतः वेक्टर f इज इक्वल टू k m डॉट वेक्टर ए, यह है समीकरण 9.11। हम बल के मात्रक को इस प्रकार लेते हैं कि नियतांक k का मान 1 रहे। समीकरण 9.11 में k बराबर 1 रखने पर वेक्टर f बराबर m इंटू वेक्टर a। समीकरण 9.12, यह है समीकरण 9.12 से बल का मात्रक प्राप्त करते हैं। इस समीकरण में द्रव्यमान एवं त्वरण का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रतिस्थापित करने पर बल F का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर F का मात्रक होगा। बल के इस मात्रक को एक विशेष नाम न्यूटन दिया गया है एवं इसका प्रतीक कैपिटल N है। कैपिटल N बराबर के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें बल मापने की एक विधि मिलती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा किसी बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न त्वरण ज्ञात हो तो हम उस बल को माप सकते हैं। बल के अन्य मात्रक डाइन और पाउंडल हैं। एक न्यूटन बराबर 10^5 डाइन तथा एक पाउंडल बराबर 13825.7 डाइन के बराबर है, मतलब कि एक पाउंडल 13825.7 डाइन के बराबर है। अब मैं इसे समझाता हूँ। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, यहाँ सबसे पहले तो मोमेंटम के बारे में बताया गया है, उसके बाद फिर F इज इक्वल टू ए में जो फॉर्मूला है बल का वो किस प्रकार से लाया गया यह बताया गया है। न्यूटन किसे कहते हैं, न्यूटन किसका मात्रक है यह भी बताया गया है और उसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। संवेग किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु जो गति में हो उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही संवेग कहलाता है। इसके लिए फॉर्मूला P इज इक्वल टू एम भी है, जहाँ P मोमेंटम है, m मास है और v वेलोसिटी है। संवेग का मात्रक kg मीटर पर सेकंड है, इसे याद रखना है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है, अब इसे समझते हैं। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिसमें बल लगाया जाता है। कोई वस्तु गति में है तो उसका द्रव्यमान है, उसका वेग है और वेग का दिशा भी है, तो उसमें जो परिवर्तन होगा, द्रव्यमान तो बदल नहीं सकता, परिवर्तन किस में होगा, वेग और दिशा में। तो वेग और दिशा में जो परिवर्तन होगा वो उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी दिशा में वह वस्तु भी मूव करना शुरू करता है, मतलब परिवर्तन भी उसी दिशा में होता है। इसके लिए आप अपने कमरे में किसी वस्तु को गति में लाकर फिर उस पर कोई बल लगाइए तो जिस डायरेक्शन में आप बल लगाएंगे वस्तु भी उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। यही कहता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार एक फॉर्मूला भी हमें बताया गया है, वो ये है कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण और F का SI मात्रक kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे एक नया नाम दिया गया वो है न्यूटन। अब जो उदाहरण दिया गया है हम उसे समझते हैं। उदाहरण 9.8, 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। यदि बल को दोगुना कर दिया जाए तो त्वरण कितना हो जाएगा। प्रश्न में क्या दिया है, मास दिया है मतलब द्रव्यमान दिया है वह है 5 kg और त्वरण दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछ क्या रहा है, फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास है 5 kg और एक्सेलरेशन है 10 m/s² सभी SI यूनिट्स में है, इसलिए F इज इक्वल टू 5 × 10 N मतलब 50 N। प्रश्न के अगले भाग में यह कहा गया है कि अगर बल को दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना आया था 50 N, हम दोगुना करेंगे तो कितना होगा 100 N। तो अगर बल को दोगुना कर दिया जाए मतलब 100 N कर दिया जाए तो त्वरण कितना हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला है, यहाँ पर F हमें पता है, A पूछा जा रहा है और M जो है पहले से वही रहेगा, तो F इज इक्वल टू एम ए से हम निकाल सकते हैं A बराबर F बाई एम, F 100 N है और मास 5 kg है, तो 100/5 मतलब 20 m/s² एक्सेलरेशन होगा। उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि द्रव्यमान को स्थिर रखकर बल को दोगुना कर देने पर त्वरण दोगुना हो जाएगा। इस चीज को याद रखना चाहिए कि जब भी किसी वस्तु के द्रव्यमान को स्थिर रखा जाए और बल को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु का जो त्वरण होगा वह भी दोगुना हो जाएगा। इस प्रकार से हमने न्यूटन की गति का पहला नियम और न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ लिया है। अब अगले सेशन में हम न्यूटन की गति का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण, घर्षण, प्रणोद एवं दाब जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मैं स्वप्निल विवेक आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।